ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 80 श्लोक क्रमांक 38। वयं वृषं तत्र महानीलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरम्बुसंप्लवे दिशो विदन्तो अथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुराः वयं भृशं तत्र महानीलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरम्बुसंप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुराः वयं भृशं तत्र महानीलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरम्बुसंप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुराः।
पहले ये वर्ड टू वर्ड हम लोग करेंगे। वयं बिसीज्ड बाय द पावरफुल विंड एंड रेन वी लॉस्ट अवर वे अमिडस्ट द फ्लडिंग वाटर्स वी सिंपली हेल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड इन ग्रेट डिस्ट्रेस वॉन्डर्ड एमलेसली अबाउट द फॉरेस्ट। पर्पर्ट बाय डिसिपल्स ऑफ वृषम तत्र महानीलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुर अम्बु संप्लवे दिशो न जाने त परस्परम वन गृहीत हस्ता परिबभ्रिम आतुरा। तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक दशम स्कंद के सुदामा और कृष्ण के आख्यान में प्रस्तुत हुआ है और क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत भर से भक्तगण आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं तो मैंने विशेष रूप से इस श्लोक का चयन किया है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण की महिमा का वर्णन है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, हाउ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, कि कृष्ण और बलराम जी दीर्घकालीन वियोग के पश्चात वसुदेव और देवकी के साथ मथुरा में पुनर्मिलन करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि नाना प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों के बाद ही कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के जन्म के तुरंत पश्चात वसुदेव जी कृष्ण के आदेशानुसार कृष्ण को गोकुल महावन में स्थानांतरित कर दिए। तत्पश्चात नाना प्रकार के विकट परिस्थितियां आई, मामा कंस ने अपने भांजे के लिए कई सारे गिफ्ट भेजे, चलते फिरते बहुत सारे खिलौने थे, रूप रंग भी बदलते थे लेकिन थोड़ा छूने में स्पर्श करने में खतरनाक थे। तो भांजे को मामा के गिफ्ट अच्छे नहीं लगे, सबको तोड़ के फेंक दिए। ये उपमा उद्धव जी तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में देते हैं, उद्धव जी का एग्जाम्पल है मेरा नहीं, कि जैसे कोई बच्चा अलग अलग प्रकार के खिलौने के तोड़ के फेंक देता है, वैसे कृष्ण ने इन सभी नाना प्रकार के राक्षसों को असुरों का वध कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ये खिलौनों से आकर्षित होते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं, कोई उछलते हैं, कोई घूमते हैं, तो एक एक जो असुर भेजे थे कंस ने, वो भी अपने आप में एक ही थे इतिहास में। मार्केट में ऐसा मॉडल दूसरा मिलेगा नहीं कि अचानक उसका रूप बदल गया, आकार बढ़ गया, अचानक कम हो गया, घट गया। तो कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाओं की रचना की इसको प्रदर्शित करने के लिए कि ब्रज में भक्तों के प्रेममय आदान प्रदान के बीचों बीच कई बार विकट परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन जो भक्तगण मुझ पर आश्रित होंगे उनको किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण अभयदान देते हुए सब ब्रजवासियों की निरंतर रक्षा करते चले गए और तत्पश्चात अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को मथुरा में लेके गए। और मथुरा में जाने के पश्चात कंस का वध हुआ। कंस के वध के पश्चात हम विचार कर सकते हैं कि वसुदेव जी जिनका चित्त कृष्ण प्रेम का एक महासागर के तुल्य है, किस तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने की प्रतीक्षा करते होंगे। इस जगत का कोई सामान्य माता और पिता अपने पुत्र या पुत्री के प्रति जो स्नेह की भावना हृदय के भीतर रखते हैं वो वही जानते हैं। और हम विचार कर सकते हैं कि शास्त्र में भी पुत्र की न प्राप्ति से कितना दुख होता है, जैसे चित्रकेतु महाराज को, और पुत्र के विनाश के पश्चात कितना शोक होता है, कितना सदमा पहुंचता है, और वो इस जगत के श्रेष्ठतम शोकों में एक माना गया है। तो यशोदा और नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने का लाभ प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, और वसुदेव और देवकी कठोर तपस्या करते चले गए और उनकी तपस्या कोई इस जन्म की नहीं थी। पूर्व जन्म में वृष्णि और सुतपा के रूप में भी उन्होंने भीषण तपस्याएं की थी और कई जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि तपस्याओं के पश्चात और इस जीवन में भी कंस के द्वारा नाना प्रकार के आघातों को सहन करने के पश्चात कृष्ण का जन्म हुआ, फिर भी देवकी को एक सामान्य मां की तुलना अपने नवजात शिशु के साथ लाड़ प्यार करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सौभाग्यवती देवकी कृष्ण के जन्म के पश्चात, लक्ष्मीपति कृष्ण के जन्म के तुरंत पश्चात सौभाग्यवती लक्ष्मी देवी के पति भगवान श्री कृष्ण, जिनके संग मात्र से किसी के जीवन में सौभाग्य का उदय हो सकता है, तुरंत ही देवकी का संग त्याग करके देवकी को दुर्भाग्य के एक महासागर में निमग्न करके चले गए। तो विचार कर सकते हैं कि देवकी के मन में किस तरह कृष्ण के वियोग के कारण धड़कन निरंतर चलती होगी। लेकिन वही देवकी अब दीर्घकालीन प्रतीक्षा के पश्चात जब कृष्ण का संग लाभ प्राप्त की, तो सर्वप्रथम वसुदेव और देवकी कृष्ण को कहते हैं कि आपका अब तक वैदिक पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण संपन्न नहीं हुआ, इसलिए हम अपने दोनों पुत्रों को प्रशिक्षण के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और विधिवत जो वेदों में नाना प्रकार के कलाओं का वर्णन है उसमें पूरी तरह निपुण बनाने के लिए किसी गुरु के आश्रम में भेजना अनिवार्य है। तो मैं इस कथा का परिचय इसलिए दे रहा हूं जिससे आप सब इस प्रशिक्षण के महत्व का मनन कर सको, विचार कर सको कि किस प्रकार की परिस्थितियों में कृष्ण और बलराम को संदीपनी मुनि के आश्रम में अवंती में भेजा गया। यह असामान्य परिस्थिति थी, कोई सामान्य इस जगत का माता पिता कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता का पुत्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, शिष्यों के प्रति इतना अगाध प्रेम और प्रीति होती है कि कोई विचार भी नहीं कर सकता कि उनसे क्षण भर के लिए भी वियोग हो, उनसे दूर रहें। तो उनको भेजा गया, कृष्ण और बलराम को। और कोई कह सकता है कि कृष्ण और बलराम को तो नंद महाराज ने प्रशिक्षण दिया ही था, लेकिन गोवत्स पालन में और नाना प्रकार के अन्य कृषि संबंधित कार्यों में, जो कि वैश्यों के लिए अनुमोदित था, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने नाना प्रकार के और प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए थे, और इसलिए विधिवत जो भी प्रशिक्षण उनके लिए आवश्यक हो वसुदेव और देवकी कृष्ण और बलराम से वियोग अनुभव करने के लिए और सहन करने के लिए तैयार थे, और तब उनको अवंती भेजा गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अर्वाचीन मानव समाज में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को बड़ी हीन भावना से देखी जाती है, और कोई टेक्नोलॉजी हो या मेडिकल कॉलेज हो या कोई प्रकार का डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई युवक युवती यदि इच्छा व्यक्त करें तो उसे प्रशंसनीय और सराहनीय माना जाता है, लेकिन वही युवक और युवती कहे कि मुझे आध्यात्मिक प्रशिक्षण चाहिए तो लोग कहते हैं और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारा, ये कोई उम्र है क्या आपकी। जैसे पहले भी मैंने बताया कथा, कोई एक भक्त प्रचार कर रहे थे किसी को, और वो लड़का आके मंदिर में आने लगा तो उनके पिता को बड़ा क्रोध आया। वो आके मंदिर के प्रेसिडेंट को कहने लगे, ये क्या है, ये मेरे बेटे की आयु है क्या आध्यात्मिक प्रशिक्षण पाने की, मंदिर में आने की, जब वो मेरी उम्र के हो जाए तब वो मंदिर में आना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है, बच्चे को छोड़ देते, आप आ जाइए। तो बोला जरा घर पे पूछना पड़ेगा। तो घर पे गए, अगले दिन आए, बोले बेटे को रहने दो, चलता है। और बोले हरे कृष्ण, बोले बड़े खतरनाक है, किसी को छोड़ते नहीं। लेकिन वास्तव में ये बात है कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तो इन श्लोकों में भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में अवंती में किस तरह बलराम जी के साथ और बाकी अन्य सखाओं के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किए, इसका वर्णन आता है। और आप लोगों ने कृष्णा आर्ट बुक में पिक्चर देखा होगा, कृष्ण और बलराम दोनों शेव किए हुए, और संदीपनी मुनि उनको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, और कई बार हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह में उसको बैकग्राउंड पिक्चर करके यूज करते हैं। तो उज्जैन की यात्रा में हम लोग एक बार अभी कुछ समय पहले गए थे, तो मैं ये बता रहा था कि कृष्ण अलग अलग स्थानों में अलग अलग लीला करते हैं, और कृष्ण का एक नाम है केशव। केशव अर्थात जिनके लंबे सुंदर घने घुंघरालू बाल हैं, केशव है कि नहीं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि विपरीतानि केशव निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव, हे कृष्ण आप क्यों मुझे इस तरह के भयंकर कार्यों में, जघन्य कार्यों में लगा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। तो उसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं विपरीतानि केशव, अर्जुन युद्ध करने के मूड में नहीं थे, इसलिए कृष्ण को वो आरोपित कर रहे थे कि क्या आप मुझे ऐसे बेकार कार्य में लगा रहे हो, मेरी बर्बादी की योजना बना रहे हो। और केशव शब्द का प्रयोग किया, और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि केशव विन्यास करोति इति केशव, जो केश को सजाए सज्जा करे वो केशव। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि अर्जुन वास्तव में कहना चाह रहे हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण वृंदावन में किस तरह आप राधारानी के केश सजाते हो और कितने अच्छे मधुर लीलाएं करते हो, तो ऐसे मधुर लीला करने वाले आप कहां यहां पर बड़ा भयंकर बीभत्स से युक्त और नाना प्रकार के आतंकवादी कार्यों में मुझे लगा रहे हो, जरा याद करो अपने ही नाम को, केशव हो तुम। अर्थात फूलों के साथ आप राधारानी के केश सजाते हो, और कहां ये युद्ध भूमि में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ, मूड ठीक नहीं रहेगा आपका, मुझे छोड़ दो और आप भी उस लीला को याद करो और वृंदावन का टिकट कटा दूं आपका, यहीं से निकल जाइए। तो वास्तव में केशव अर्थात जो केश जिनके सुंदर हों, तो वो केश भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद सबका शेविंग करा रहे थे जो ब्रह्मचारी बन रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट के लंबे बाल थे, कृष्ण के बड़े सुंदर लंबे घुंघराले बाल थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के लंबे काले घुंघराले बाल हम लोग देख रहे हैं पंचतत्व में, नित्यानंद प्रभु के लंबे काले घुंघराले बाल, बुद्ध जो कि उस समय वहां बहुत प्रचलित थे उनके भी लंबे बाल हैं, तो आप हम लोगों को शेविंग करने क्यों बोल रहे हो? प्रभुपाद ने कहा देखो अमेरिका में आने से पूर्व आप लोग इतने साल अमेरिका में थे, मैं तो नहीं था, आप लोगों को कृष्ण का ज्ञान था क्या? बोलो नहीं। चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान था? नहीं। नित्यानंद प्रभु कौन था मालूम था? नहीं। किसने बताया, किन्होंने आपको यह सब ज्ञान दिया? बोला आपने। तो मेरा हेयर स्टाइल क्या है? तो बोला हाँ आप तो बाल नहीं है आपके, तो इसलिए मैं भी कहता हूं आप यही करो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये है वो है अलग अलग प्रकार के, लेकिन ज्ञान देने वाला हम हैं और हम आपको कह रहे हैं तो इसमें क्या विशेष बात है? एक और प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे थे एंड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू सेव यू, और बंगाली का एक्सेंट था प्रभुपाद का तो ऐसा लग रहा था लॉर्ड चैतन्य हैज कम टू सेव यू, तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद सेव और शेव, प्रभुपाद ने कहा सेव यू एंड सेव यू। तो केशव जो सुंदर काले घने घुंघराले बाल के लिए प्रसिद्ध है वो वास्तव में केवल एक ही स्थान पर अपने केश से विहीन दिखते हैं और वो है अवंती में, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, है कि नहीं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि ऐसा क्यों। तो कृष्ण ने अपने केश निकाल दिए और वो अब इस लीला के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि वो संदीपनी मुनि के आश्रम में प्रशिक्षण क्यों ले रहे थे। तो ये प्रसंग आता है सुदामा जी जब कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं द्वारकापुरी में, तो द्वारका के सारे निवासी सुदामा के इस बड़े ही कृश और बहुत ही दुर्बल अवस्था को देखकर विस्मित होते हैं कि कौन घुस आया है, और उनकी विस्मय की सीमा पराकाष्ठा को पहुंचती है जब देखते हैं कि बाकी अन्य जितने कृष्ण और रुक्मिणी इत्यादि भाव विभोर होकर सुदामा का ऐसा आओ भगत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं मानो कोई बहुत पुराना कोई परिचित मित्र हो, तो इससे उनका विस्मय और अधिक तीव्र हो जाता है। और कृष्ण सुदामा को बिठाकर उनके चरणों को अपने हस्तकमल में धारण करके शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत, शुश्रूषया परमया बहुत प्रेम से दिव्य प्रेम के अभिव्यक्ति के माध्यम से कृष्ण सुदामा को जो कि बिल्कुल एक सामान्य चीथड़ों में उपस्थित ब्राह्मण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति उनको आसन में बिठाकर उनके चरणों को अपने हाथ में धारण करके उनका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और पाद प्रक्षालित जल को अपने मस्तक पर धारण कर रुक्मिणी देवी लक्ष्मी जी साक्षात वहां बगल में बैठकर खड़ी होकर चामर ढुला रही हैं, पाद संवाहनाद भी पाद संवाहन कर रहे हैं पूजितो देव देवेन और पूज रहे हैं इस तरह से विप्र देवेन देववत, देवताओं के देवता कृष्ण सुदामा की ऐसी पूजा कर रहे हैं विप्र देवेन, सभी ब्राह्मणों के देवता ब्राह्मणों के लिए पूजनीय नमो ब्रह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मणों को बहुत मान देते हैं वो वास्तव में अब अपने इस विशेष जो पद दिया गया है उनको उस संज्ञा का परिचय दे रहे हैं, अपने उस नाम को सार्थक कर रहे हैं सुदामा ब्राह्मण का सत्कार करते हुए। तो सुदामा के मन में तनिक कुछ किंचित संशय उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में कृष्ण ने मुझे पहचाना कि नहीं। अचानक मैं यहां प्रवेश किया हूं और निर्धनता की कोई सीमा हो तो वास्तव में वो मैं ही हूं, और ऐसे निर्धन व्यक्ति को ऐश्वर्य के राजधानी द्वारकापुरी में इतना सम्मानित किया जा रहा है, इतना सत्कार किया जा रहा है, और कृष्ण मुझे बैठ बिठाकर लक्ष्मी देवी के साथ इस तरह पूज रहे हैं, तो कहीं कुछ पहचानने में गलती तो नहीं हो गई? वीआईपी पास किसी और को दिया था और दूसरा कोई आ गया और बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन मिल जाता है कि डोनर आ गए, डोनर आ गए, और वो सोच रहा है इतना क्यों मेरा पूजा हो रहा है, और बाद में मालूम पड़ता है कि वैसे ही दिखते थे वो डोनर, और ये दूसरा आ गया तो उनको सारा रिसेप्शन मिल गया, उनको गेस्ट हाउस मिल गया, और जब असली डोनर आए तो मालूम पड़ा दूसरा कोई अंदर है। कभी कभी हो जाता है, गलती से हम दूसरे को कुछ और मान लेते हैं। तो सुदामा को यही लग रहा था कि बराबर हमको पहचाना कि कोई और समझकर इतनी पूजा हो रही है, और जब बाद में मालूम पड़ेगा कि कोई और था तो कहीं फिर सत्कार वापस न ले ले। तो उनके मन में संदेह हो रहा था कि उचित परिचय हुआ है कि नहीं हुआ है, कृष्ण ने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना है। तो कृष्ण भी सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सभी जीवों के हृदय की बात को जानते हैं भली भांति। वो भी समझ गए कि सुदामा के मन में इस तरह विस्मय की बात हो रही है, तो कृष्ण भी उनके संशय समाधान के लिए अब पूर्व काल में बीती आपस की घटनाओं का स्मरण करा रहे हैं कि भाई मैं जानता हूं तुम कौन हो, हम दोनों साथ में एक साथ तो थे ना ब्रह्मचारी आश्रम में, अवंतीपुर में संदीपनी के आश्रम में एक साथ जो समय बिताया आप ही तो थे, मैं भी वही था। सुदामा के मन में यह भी संशय है ये कोई और तो नहीं है, क्योंकि हम तो इतना खेलकूद करते थे आश्रम में और ये अचानक आकर इतना पूजा करना, इतनी सेवा करना, तो संशय होता ही है। अब किसी के साथ एक प्रकार का रस हो सख्य का और आप हमेशा प्रेम से गले में गले मिलाकर बातें करते हो और मजाक करते हो, और अचानक आप बहुत दिन के बाद एक दिन आओ और वो पूरा साष्टांग दंडवत करे और 10 बार दंडवत करते ही रहे और प्रभु 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 कहां थे आप, मैं तो आपके वियोग के कारण मर रहा था, क्या हो गया आपको, क्यों छोड़कर चले गए, और ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आपको भी लगेगा क्या हो गया इसको। मेडिकल इंचार्ज को पूछे के बीच में वायरल फीवर हुआ था क्या, कुछ हो गया था जिसके कारण ऐसा ये सब बातें कर रहा है, क्या बात है। हो सकता है इस तरह मन में कुछ संशय आ जाए, तो इसलिए एक बार पूरी तरह से उनको आश्वस्त करने के लिए वो कह रहे हैं कृष्ण कि अब मैं इनको बता दूं कि वास्तव में ये कौन है। तो श्री भगवान उवाच, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडी सदृशो नवा। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण कहां पर होता है, वेयर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इज गिवन। जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण है वो कहां, इसमें मैंने लगभग 5 पॉइंट बनाए हैं प्रशिक्षण के बारे में, वेयर व्हाट हू हाउ, इस तरह से कि प्रशिक्षण हो तो कहां होना चाहिए, तो वो आश्रम में, गुरुकुल में, अर्थात कोई भी आश्रम में। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्, तो लब्ध दक्षिणात् अर्थात गुरुकुल में प्रशिक्षण पाने के पश्चात जब आपने गुरु को सम्यक प्रकार से दक्षिणा प्रदान की, उसके पश्चात वो कह रहे हैं समावृत्तेन धर्मज्ञ बार्योड़ी बार्योड़ा सदृशी नवा, उसके पश्चात क्या आपको उचित प्रकार की धर्म पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं। तो अर्थात ये प्रशिक्षण जो है ब्रह्मचर्य आश्रम से आरंभ होता है वैदिक समाज में, और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जब 5 से 25 वर्ष के बीच में गुरुकुल में किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो अब अर्वाचीन मानव समाज में कलयुग में यह संभव नहीं, क्योंकि 5 से 25 के बीच हम लोग एजुकेशन सिस्टम में फंसे रहते हैं और कई बार पता भी नहीं पड़ता कि हरे कृष्ण क्या है। एक ही परिचय रहता है, कभी हमने किसी भक्त को कहीं देख लिया हो या कोई टीवी पे कुछ देख लिया हो, या हमारे समय में तो एक ही परिचय था, देवानंद का पिक्चर दम मरो दम, और वो गाना सुन लिया तो हरे कृष्ण का कुछ है पता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को आश्रम में आकर प्रशिक्षण देना संभव नहीं, इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। यह संपूर्ण संस्था की स्थापना ही हुई है आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए। तो जो लाभ संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम को हो रहा था, वही व्यक्ति आज की तारीख में इस्कॉन के किसी भी केंद्र से जुड़कर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। नौजवान हो तो कॉलेज के कैंपस में, आश्रम में हो तो ब्रह्मचारी के रूप में, या गृहस्थ हो तो कांग्रेगेशन में रहकर भी नाना प्रकार के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वो व्यक्ति प्रशिक्षित हो सकता है। प्रभुपाद जी एक ऐसे समय अमेरिका में गए थे जब पाश्चात्य समाज अधर्म की चरम सीमा पर था और नाना प्रकार के अवैध पुरुष स्त्री संबंधों के गुणगान किए जा रहे थे, और प्रभुपाद जब गए तो नाना प्रकार के युवक युवतियां अमेरिका के धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट होकर नरकगामी जीवन जी रहे थे और उनकी अधोगति निश्चित थी। लेकिन अनायास श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के आदेश को अपने मस्तक पर धारण कर वहां केवल कृपा वृष्टि के उद्देश्य से प्रकट हुए, और उन नौजवान युवक युवतियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि हमारे जीवन में इतना विशाल भाग्योदय होगा। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद ने कामना की, विचार किया कि इन सब का भला होना चाहिए, तो केवल उनके प्रबल इच्छा शक्ति मात्र से हजारों की संख्या में युवक युवतियों का जीवन परिवर्तित हुआ। ऐसे समाज में जहां दूर दूर तक कोई वैदिक सभ्यता और संस्कृति का लेश मात्र गंध नहीं, तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, कृपा महारानी, अति बलवती कृपा महारानी भक्त के कृपा की अनुगामिनी होती है, और जब भगवान के भक्त इच्छा करते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं कि किसी का उद्धार होना चाहिए, किसी का भला होना चाहिए, कृष्ण के चरणों का गंध इस जीव के हृदय में प्रकट होना चाहिए, तो केवल उस इच्छा मात्र से भगवान श्री कृष्ण ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव के जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं, आध्यात्मिक क्रांति लाते हैं। तो केवल श्री प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से ही ये संपूर्ण इस्कॉन संस्था की स्थापना हो पाए, जिसके कारण आज हम लोग अब 2008 में बड़े बड़े शहरों में रहकर भी अपने नाना प्रकार के उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए भी अपने जीवन को सुधारने की शक्ति रख सकते हैं। शिला प्रभुपाद की। तो कभी इस बात का विस्मरण नहीं होना चाहिए कि ये जो कुछ भी हम लोगों को प्राप्त है वो किसी एक व्यक्ति के कठोर परिश्रम और तपस्या का परिणाम है, और उन्होंने जितनी तपस्या और परिश्रम की है हम लोगों को उसका 1% भी तपस्या नहीं करना पड़ रहा है, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अपने भक्ति के जीवन में इस्कॉन में रहते रहते भी कई बार मन में इस तरह मिलाने के विचार आते हैं कि ओ ये क्या चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, क्या है, ऐसा क्यों है, प्रसाद में खिचड़ी ही क्यों है, ये है वो है, अलग अलग प्रकार से विचार आएगा। लेकिन जब ऐसे विचार आए तो सोचना चाहिए कि हम लोग ये सब समस्याओं की चर्चा करने की भी हालत में नहीं होते थे। कभी कोई पान की दुकान में खड़े होते थे और पान वाले से झगड़ा करते रहते थे, पान में कत्ता क्यों नहीं डाला तुमने, पान में ये क्यों नहीं किया, पान का रेट इतना क्यों है, इतना क्यों है, ऐसी झगड़ा करते थे। वो प्रभुपाद का हमारे जीवन में प्रकट हो गए तब जाके हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई भोग का टाइमिंग ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हम लोग जो प्रॉब्लम में चर्चा कर रहे हैं वो अलग हो गया क्योंकि प्रभुपाद की दया से, नहीं तो अभी तक चाय वाले के साथ झगड़ा करते थे, अरे कटिंग चाय क्यों नहीं दे रहा तू, और बीड़ी वाले से सिगरेट वाले से झगड़ा करते रहते थे, या कोई क्लब में बैठ के ताश के ऊपर झगड़ा करते रहते थे, या पिक्चर हॉल में बैठ के सोचते रहते थे क्या बेकार पिक्चर दिखाया, डायरेक्टर से झगड़ा करते रहते थे। तो प्रभुपाद की कृपा हुई कि आज हम लोग सारे व्यसन छोड़कर चाय कॉफी सब परित्याग करके यहां बैठे हैं, और फिर थोड़ा साउंड सिस्टम गड़बड़ हो गया, या फैन नहीं चल रहा, या फंड्स नहीं हो रहा, या प्रसाद ठीक नहीं हुआ, या लोग ज्यादा आ गए या लोग कम आ गए, तो इसकी चर्चा हो पा रही है। लेकिन यहां तक भी पहुंचे कैसे वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई जन्मजात हम लोग चतुष कुमार भक्त नहीं है जो सीधा वैकुंठ विमान से लाकर जो वैकुंठ के जो निवासी ने छोड़ दिया, जा बेटा पूना का उद्धार कर, जा बेटा बंबई का उद्धार कर, खास पतित पावन हेतु तव अवतार, सौ चूहे मारकर दिल्ली हज को चली, तो बहुत कुछ करके हम लोग आए हैं। लेकिन कई बार इस बात को हम लोग भूल जाते हैं, और कई बार नए लोग भी पूछते हैं क्या प्रभु जी आप पहले से ऐसे ही थे क्या, भक्त थे क्या, पहले से ही भक्त थे क्या, तो बोलने में लज्जा आती है, ऐसा ही समझो। आप जो कह रहे हो गलत नहीं है, ठीक भी नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। पहले से अंदर से ऐसे ही था, बाहर से अगरबत्ती के बदले कुछ और चलता था हाथ में, वो ज्यादा विचार मत करो, गोल्डन अवतार नहीं था, गोल्ड प्लेट था, बाकी सब ठीक है, वैसे बुरा नहीं, दिल का पहले से अच्छा था, बस होटल में बिल भरता रहता था और कुछ नहीं। तो इसलिए ये हुई कृपा तो श्रील प्रभुपाद की दया से, और तब जाकर हम लोग यहां तक आ गए हैं कि कुछ चर्चा भी करें कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारी कोई अपनी शक्ति नहीं, हम कोई जलदूत में बैठ के गए नहीं, कोई आपको यहां से अलीबाग तक जाते जाते पेट का बिल्कुल गुड़गुड़ होने लगता है। एक बार मेरे को पिकनिक में लेके गए, बोले अलीबाग चलेंगे, बोट में जाएंगे, बोले बहुत बढ़िया बोट है, तो पिक्चर में जब बोट दिखता है तो बहुत आकर्षक लगता है, उसके अंदर बैठो तो ऐसा पेट का चर्निंग होता है कि क्या बताओ। तो प्रभुपाद यहां गए महीनों महीनों, और तीन तीन हार्ट अटैक झेल के वो गए अमेरिका में, ऐसा नहीं था कि सर्दी खांसी आ गई थी, तीन छींक मारे और फिर डॉक्टर के पास गए, तीन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब क्या होता है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं था कि बॉस्टन में पहुंचते साथ सबसे पहले बोले सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, अपॉइंटमेंट लेते हैं उसका। और वो भी अमेरिका में आप लोग जाओगे तो प्रचार करना इतना कठिन कार्य है, वहां सामने ऑडियंस बैठता समझता नहीं बोलना क्या है, आके बैठ जाते हैं, हम लोग सोच रहे कौन सी भाषा में बोले, कहां से शुरू करे कहां अंत करे। अभी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था एल्बनी में, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क सुनी एल्बनी, वहां उन्होंने प्रोग्राम का शीर्षक दिया माउंटेन ऑफ फूड फेस्टिवल, क्योंकि वो देखे प्रवचन के लिए कोई आएगा नहीं, तो माउंटेन ऑफ फूड फेस्टिवल, पहले तो फूड वो भी ऊपर से माउंटेन, मतलब इतना ग्रॉस इतना स्थूल कि ये पढ़कर, और कोई कीर्तन प्रवचन का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, माउंटेन ऑफ फूड फेस्टिवल, 150 अमेरिकी बॉय और लड़के और लड़कियां आ गए, उपस्थित हो गए। 7 बजे का प्रोग्राम था, 6:55 में हॉल फुल, और सामने वो लोग ने गोवर्धन के समान पूरा प्रसाद का पूरा सजा के रखा था, और सब लोग आके बिल्कुल देख रहे,
चेयर में बैठे हैं लेकिन एक थोड़ा छूट दो तो बिल्कुल झपट मार देंगे, ऐसे मूड में थे। लेकिन सब लोगों को संशय हो रहा था कि बगल में माइक क्यों रखा है, इतना बढ़िया माउंटेन सजाया है लेकिन माइक क्या कर रहा है, बीच में बाधा ला रहा है। तो फिर मेरा परिचय दिया गया कि अब थोड़ा आपको ये माउंटेन के बारे में बताएंगे कि क्या है। और वो लोग सब घूर घूर के इतने क्रोध से मुझे देख रहे थे, अरे तुम क्या बताओगे, हम जान लेंगे डायरेक्ट, हम लोग को चांस तो दो, बताएंगे आपको ये क्या है। और मैं 10-15 मिनट मुश्किल से बोला, लेकिन इतना कठिन वो प्रवचन था मेरे लिए, क्योंकि सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे कि कहां आ गया बीच में, हमारे और प्रसाद के बीच में। तो उसके पश्चात वो लोग ने फिर परिक्रमा किया उसका, हमने कहा कि ऐसे परिक्रमा भी करना पड़ता है। और फिर सब लोग गए और सब हाथ में चम्मच लेके आए और सब लोग जो जो चाहिए था उसमें से ले लिए। और मजे की बात है कि उस दिन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल था, डेट के हिसाब से गौर पूर्णिमा का अगला दिन, तो वो जितने लोग आए थे किसी को कुछ पता नहीं महाप्रभु कौन है क्या है, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल के दिन महाप्रसाद सेवन का उनको लाभ मिल गया, ये प्रभुपाद की कृपा से। तो उस समय प्रभुपाद कैसे किस मूड में गए कौन कह सकता है, कि इस्कॉन अगर नहीं होता तो हम लोगों के जीवन में कैसे भक्ति का उदय होता था। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि मंदिर की स्थापना करो यहां पर, जिसके शिखर को देखकर पता नहीं दूर दूर से कौन सा भटका हुआ राही कृष्ण की ओर आ जाए। आज जो आप तपस्या करोगे लेकिन 50-100 वर्ष के पश्चात किसी एक व्यक्ति को, किसी भटके हुए जीव को कहां कौन से विशेष कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो जिस समय प्रभुपाद जब जलदूत में गए, जो परिश्रम उन्होंने किया और जो तपस्याएं उन्होंने झेली उसका लाभ आज हम लोग मंदिर में ले रहे हैं। और चौपाटी में आओ तो हम लोगों का मंदिर हॉल एयर कंडीशनड है, संडे फीस्ट में लगाओ तो बिल्कुल एसी हॉल चलता है, 12:30 बजे मंदिर फुल हो जाता है, सब लोग बुकिंग करने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे ये क्या टेंपल हॉल एयर कंडीशन क्यों किया है, जिससे कि श्रवण और कीर्तन अच्छे प्रकार से हो सके, जिससे कि कथा में ध्यान लगे। खैर बाकी भी लोग हैं जो पीछे बैठकर सोचते हैं कि आह पहले भी कथा में थोड़ा विश्राम करते थे, आजकल ज्यादा मजा आते। लेकिन इतना सब जो अनुकूल परिस्थिति कथा के लिए कीर्तन के लिए कैसे तैयार किया गया, जिससे लोग कृष्ण की कथा और कीर्तन को सुन सकें, ध्यान लगा सकें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन में हम लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, और ये बहुत आवश्यक है समझना। जैसे हमारे श्रुति धर्मा प्रभु बताते हैं लंदन की बात, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, विशाल उसका संदूक था और संदूक निकालते निकालते अचानक संदूक सर पे गिरा तो मेमोरी लॉस हो गया, तो उसकी स्मृति हो गई, स्मृति शक्ति वो खो बैठे, तो बेचारे भूल गए वो कौन है, तो बाहर निकलने लगे, बाहर निकलते निकलते पूछ रहे थे मैं कौन हूं मैं कौन हूं। और वहां एक इस्कॉन का डिवोटी किताब बेचते बेचते चल रहा था, बोला गीता पढ़िए जान लो मैं कौन हूं। बोला तुम भी यही बोल रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोला अरे बिल्कुल जानते, आप नहीं जानते, नहीं चलो मंदिर चलो आपको हम बता देंगे आप कौन हो। मंदिर में लेके चले गए, मंदिर में रहने लगे, शेविंग वेविंग भी कर लिया। और उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद किचन में काम कर रहे थे, बटाटा का एक गोनी था सर पे गिरा, वापस उनकी स्मृति शक्ति आ गई और वो सोचे ये मैं क्या कर रहा हूं इन लोगों के साथ, ये कपड़ा क्यों पहना हूं। और फिर जब आईने में देखा अपना हेयर स्टाइल तो पूछा मैं कौन हूं। तो भक्त ने कहा यही प्रश्न तुमने बहुत दिन पहले पूछा था, उसके उत्तर में ये सब मिला है। तो फिर उन्होंने अपने परिवार को फोन लगाया और बोला कि ऐसा ऐसा हो गया था, अब मैं मंदिर में आ गया हूं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले आर दुख नाए। सारे दुखों का यही कारण है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसको भूल गया हूं। जैसे मैं कह रहा था, गोरा पहुना भाजिया मैनू प्रेम रतन घन हिलाए हराइनु। रतनदास ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि मैंने महाप्रभु का भजन नहीं किया और ये प्रेम का रतन, इस धन को मैं ठीक प्रकार से रख नहीं पाया और वो खो बैठा, किसी ने चुरा लिया। तो कहते हैं अधन अधने, मेरे पास ये धन नहीं था और यत्न कोरी, मैं अधन होने के लिए यत्न किया और ये महान धन जो कृष्ण प्रेम का था उस धन को मैंने त्याग दिया। अधन अधन यतने कोरी धन त्यागिनु, ये अधन को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई यत्न करे प्रयास करे और पूछे आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हो, बोले निर्धन होने के लिए, कंगाल होने के लिए। अधन यतन कोरी धन त्यागिनु, धन को त्याग दिया। और कहते हैं आपना कर्म दोषे, और अपने कर्म के दोष के कारण आपनी डूबिनु, मैं स्वयं डूब गया। तो हो सकता है कोई लोग दूसरों पे आरोपित करें, ये मेरे दुर्भाग्य कारण, वो है वो है वो है, उसने चुराया उसने चुराया उसने फंसाया, नहीं, आपने कर्म दोषे, मैं अपने कर्मों के कारण आपनी डूबिनु, स्वयं निमग्न हो गया हूं। तो इसका कारण क्या बताते हैं, सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, ते कारणे लागिलो ये कर्म बंध फास। सत्संग छाड़ी, सत्संग को छोड़कर मैं असत में लग गया, नाना प्रकार के भौतिक कार्यों में लग गया, ते कारणे लागिलो ये, इस कारण से कर्म बंध फास, कर्मों के बंधन का, फांसी का फंदा मेरे गले में लग गया और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत धीरे धीरे केवल यमदूतों की मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो कोई कह सकता है कि इससे, इसमें आपको आनंद क्या आ रहा है, विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु, मैं इस विषय, नाना प्रकार के विषय भोग में जो कि विष तुल्य है उसमें पूरी तरह निमग्न हो, विषय विषम विष सतत खाइनु, निरंतर इस विषय भोगों को सेवन करने में इतना आनंद इतना विलासी हूं मैं कि गौर कीर्तन रसे, जब महाप्रभु का कीर्तन होता है, भगवान नाम का उच्च स्वर में कीर्तन होता है, मगन न होइनु, उसमें मेरा मन लगता नहीं, ध्यान लगता नहीं। तो इसलिए हमको समझना बहुत आवश्यक है कि सत्संग छाड़ी कोइनु असत्य विलास, जैसे ही सत्संग को छोड़ेंगे तुरंत मन असत में जाएगा। इसीलिए पुनः केवल भगवत भक्त संगी ही हमको इस सागर से निकाल सकते हैं। तो यह श्रील प्रभुपाद की देन थी कि उन्होंने हम लोगों को विशेष रूप से इस्कॉन संस्था प्रदान किया। बाली एक राष्ट्र का नाम है, वहां पर कविचंद्र महाराज प्रचार कर रहे हैं। तो बताते हैं कि कुछ भक्त लोग किताब वितरण कर रहे थे, बुक स्टॉल लगाए थे, और बुक स्टॉल में देखा कि कोई लोग आ नहीं रहे थे, क्योंकि वहां के लोग बहुत बॉडी कॉन्शियस थे कि उनका हेल्थ के विषय में बहुत उनका ध्यान ज्यादा लगता था। तो उन्होंने एक नोटिस वहां पर लगाया, फ्री ब्लड प्रेशर चेक, और एक वहां पर डॉक्टर डिवोटी था उसको खड़ा कर दिया। तो फ्री ब्लड प्रेशर चेक देखकर लंबी लाइन लग गई लोगों की, और सब लोग लाइन में आकर अपना बीपी चेक कराते थे, और बगल में बुक टेबल था, तो बीपी चेक हो गया तो वो बोलते थे कि ये बगल में ये क्या है, तो बोलते थे ये हमारा भगवद गीता का स्टॉल है। लेकिन ठीक है, आपका बॉडी तो अभी ठीक है ना, आपका बीपी वगैरह नॉर्मल है, ठीक है आप जाइए, लेकिन ये क्यों है, तो वो हम लोग फिलॉसफी है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और डॉक्टर का भी तिलक लगा रहता था, तो वो पूछते थे आपका ये क्या लगा, वो ये तिलक है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये गीता का पालन करते हैं। बोले आप डॉक्टर हो, ये सब पालन करती हो क्यों? बोले क्योंकि इसमें हमको बहुत संतोष मिलता है, आनंद होता है। और ये गीता का फिलॉसफी क्या है? बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आप हेल्दी हो, आपका बॉडी ठीक है, ये सब ठीक है। तो जब मना करो तो उनका और जिज्ञासा बढ़ता है, अरे बता नहीं रहे क्या बात है, बताइए क्या फिलॉसफी क्या है। बोला आई एम नॉट द बॉडी, ये है फिलॉसफी, आई एम नॉट द बॉडी, आपका बॉडी ठीक है, आई एम नॉट द बॉडी अलग है वो। तो बोला नहीं हमको चाहिए, हमको ये बुक चाहिए। तो बोला पक्का चाहिए? बोला हाँ चाहिए चाहिए, बॉडी ठीक है आपका, नहीं नहीं लेकिन फिर भी चाहिए। तो ऐसा कर करके उन लोगों का हजारों की संख्या में बुक बिकता है। तो कलयुग में कई बार ऐसा है कि मना करो तो लोग और मांगेंगे, उनको बुक दिखाओ बोले नहीं आपके लिए नहीं है, आप जाओ, तो बोलेंगे अरे क्या बात करे, मना करे मतलब हमको चाहिए। तो इसलिए कहां कहां दूर दूर जाकर भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं और लोगों को सत्संग दे रहे हैं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा अन्यथा एक परपोट में, कलियुगा इज अ रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, कलियुगा पॉपुलेशन इज रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, अर्थात रॉयल अर्थात राजसी और एनिमल्स अर्थात पशु, कोई सामान्य पशु नहीं, बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ जो जीवन जिए ऐसे पशु। तो प्रभुपाद एक बार कह रहे थे, सत्स्वरूप महाराज अभी हाल ही में मंदिर आए थे, कह रहे थे कि प्रभुपाद ने एक बार कहा ये कलयुग के लोगों को प्रचार करना इतना कठिन है, हम लोगों को बटन वितरण करना चाहिए, बटन, और सबके यहां पर माथे पे वो बटन लगाना चाहिए और वो बटन पे लिखना चाहिए SR। सब लोग बोले SR मतलब क्या प्रभुपाद? प्रभुपाद बोले सिंपली रैस्कल। अर्थात कुछ बोलो किसी को तो स्वीकार नहीं करेगा, उल्टा ही बोलेगा। यह है कलयुग की दशा, भला करने जाओ तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए भक्त लोगों का एक बहुत बड़ा ही उत्तरदायित्व है कि धैर्य के साथ सहनशीलता के साथ प्रचार करे, क्योंकि आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सीधा आकर लाइन लगाए, हमको प्रशिक्षण चाहिए करके लंबी लाइन नहीं लगती, पीछे पीछे भागना पड़ता है, प्रसाद खिलाना पड़ता है, सालों साल आरती उतारनी पड़ती है, तब फिर वो तैयार होता है। ठीक है आप कहते हो तो हरे नाम जपूंगा, तू भी क्या याद रखेगा कृष्ण, चल तेरा नाम मैं ले रहा हूं, कोई बात नहीं। ऐसा उनको लगता है कृष्ण के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिए। गोविंद प्रभु हाल ही में एक सेमिनार में हमको बता रहे थे कि ट्रेन में वो जा रहे थे, एक व्यक्ति ने टी शर्ट पहना था और टी शर्ट में लिखा था कंजर्व वाटर सेव वाटर। हाँ तो उनको लगा अरे ये तो थोड़ा सत्वगुणी व्यक्ति लग रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर और पानी वानी बचत करने में इसकी काफी रुचि है, इसको प्रचार करना चाहिए। तो उनको लगा शायद मैं इसको प्रचार करता हूं लगता है कुछ पुण्यवान व्यक्ति है, पानी वानी बचाने के चक्कर में है, सेव वाटर। और वो कुछ बोलने वाले थे तभी वो व्यक्ति उठा, उसका स्टेशन आ गया, टी शर्ट के पीछे लिखा था ड्रिंक बियर। तो मजाक था कि हम पानी नहीं केवल बियर ही पीते हैं। ये कलयुग की अवस्था है कि किसी व्यक्ति को पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्र तृप्ति और कुछ नहीं। ये खांसी की तरह है, तो ऐसा समाज है जो सब खांस रहे हैं, और जब सब लोग खांसते रहते हैं और एक व्यक्ति खांसता नहीं तो सबको लगता है वो अबनॉर्मल है। विचार कीजिए अगर हॉस्पिटल के टीबी वार्ड में सब लोग खांस रहे हैं और एक व्यक्ति खांस नहीं रहा है तो सब लोग कहते हैं खांस नहीं रहे, देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या? और खांसने वाले सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाएंगे कौन कितना खांसेगा और कौन कितना कफ बाहर निकालेगा। अगर ऐसा कंपटीशन किया जाए तो सोचो, और आज के समाज में वही चल रहा है, कौन कितना काम क्रोध मोह ये सब बाहर प्रकट कर सकता है, जो कफ बाहर निकाले उल्टी करे वो श्रेष्ठ। उसको महान की पद दी जाएगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हम लोगों को इस्कॉन संस्था के माध्यम से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हमको ये न के न प्रकारे न अपने जीवन को सुधारना है। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि सुदाम जी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश किए। फिर आगे दूसरा प्रश्न उठता है कि ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या होता है, वॉट इज द गोल ऑफ दिस ट्रेनिंग, एंड द गोल ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू टीच अस कृष्णा सेंटर्ड लाइफ। चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, जीवन का केंद्र कृष्ण होना चाहिए। तो पहला प्रश्न था कि प्रशिक्षण कहां होगा, कहां प्राप्त होगा, तो गुरु के आश्रम में और हम लोगों के लिए भक्तों के संग में कोई इस प्रकार के आध्यात्मिक संस्था में। लेकिन प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या है, हम लोगों को शिक्षा देना कि निरंतर कृष्ण का ध्यान करें, कृष्ण को केंद्र बनाएं। ब्रह्मचर्य अर्थात उसका तो सेवा को छोड़कर अन्य कोई कार्य है ही नहीं, और गृहस्थ का भी कर्तव्य बनता है कि वो कृष्ण को ही अपने जीवन का केंद्र बनाए। तो आगे कहते हैं, प्रायो गृहेषु ते चित्तं अकाम विहितं तथा नैवाते प्रिय से विद्वान धनेषु विदितं हि मे। तो कृष्ण कह रहे सुदाम को कि भले आप नाना प्रकार के गृहस्थ के कार्यों में गतिविधियों में निमग्न हो, लेकिन आपने अपने जीवन का केंद्र आध्यात्म बनाया है, इसलिए भौतिक इच्छाओं से आप लिप्त नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। आप समझ गए हो कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। तो कोई भी प्रशिक्षण के अंत में जीव का यह कर्तव्य बनता है कि वो समझ जाए कि मैं भोक्ता नहीं हूं, कृष्ण ही भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि आप लोग ये सब कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, ये सब क्यों है? तो प्रभुपाद ने कहा इसका एक ही उद्देश्य है, वे क्या है, भोग, भोग, एंजॉयमेंट। तो रिपोर्टर बहुत खुश हो गया। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा नहीं, कृष्ण का, भगवान कृष्ण का भोग। तो कोई प्रश्न पूछता है कि भागवत में और गीता में इतने इतने श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की अपरिछिन्नता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, नाना प्रकार की शक्तियों का इतना व्यापक विस्तृत वर्णन आता है, इसका कारण क्यों? अरे कृष्ण भगवान है, समझ गए, उसके विषय में जो भी भक्त स्तुति करते हैं तो एक के बाद एक वही वही बोलते रहते हैं, बार बार, हर स्कंद में, हर अध्याय में बारंबार कृष्ण के गुणों का इस प्रकार से रटन करना क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? इसके पीछे एक ही कारण है कि जीव के हृदय के भीतर भोग करने की, विलास करने की वासना इतनी चिपकी हुई है कि उसको निकालने के लिए बारंबार अपने कर्णों के माध्यम से हमको कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन सुनना पड़ता है, तब जाकर जीव के भोक्तापन का अभिमान कुछ कम होगा। अन्यथा जीव अपने आप को इतना महान, शक्तिशाली और निपुण भोगी मानता है कि उसको लगता है कि मेरे सामने तो कृष्ण भी किया, मैं भी दो चार आइडिया कृष्ण को दे दूंगा कि जगत का भोग कैसे करना चाहिए। तो इसलिए बारंबार श्रवण कर करके धीरे धीरे समझ में आता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे या गृहस्थ आश्रम में रहे, यह प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, तब जाकर अंत में ये साक्षात्कार प्राप्त होता है, ये लक्ष्य है। तो वो कह रहे हैं कृष्ण सुदामा को, नॉर डू यू टेक मच प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ मटीरियल वेल्थ, ऑल्दो यू आर मोस्टली इन्वॉल्व इन हाउसहोल्ड अफेयर्स, योर माइंड इज नॉट अफेक्टेड बाय मटीरियल डिजायर्स। तो कृष्ण पे ध्यान जब होगा तो अपने आप विरक्ति आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को मिले भारत में, और वो कह रहे थे कि आप कहते हो चाय मत पियो चाय मत पियो, लेकिन भारत में तो किसी के घर में जाओ तो सबसे पहले चाय ही देते हैं, अगर स्वीकार नहीं करते तो फिर उनको बुरा लगता है, इसके बिना समाज नहीं चल सकता स्वामी जी, नहीं हो सकता है, हम लोग गृहस्थ में है, सामाजिक हम लोगों का आदान प्रदान होता है, हमको चाहिए ही ये। प्रभुपाद ने कहा ऐसा नहीं है, आप लोग बोलो हम लोग चाय कॉफी नहीं पीते, उसमें क्या है। फिर प्रभुपाद ने कहा मैं भी जब गृहस्थ था तब मेरी पत्नी ने मेरे कुछ भागवत को बेच दिया चाय का बिस्कुट लेने, तब मैंने उनको पूछा आपको क्या चाहिए चाय की मैं, तो उन्होंने कहा चाय, तो मैं घर छोड़ के चला गया। और तमाल कृष्ण महाराज उस समय प्रभुपाद को कह रहे थे आपकी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चाय को चुना, कि उनकी दया से चाय की दया से हम लोग को आप मिल गए, नहीं तो शायद हम लोगों को आपका संगलाभ नहीं मिलता। तो फिर प्रभुपाद ने कहा देखो ऐसा हमारे सामने प्रस्ताव रखा, हम चाय को छोड़ दिए निकल गए। तो बोलने लगे स्वामी जी आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन हम घर छोड़ के कहां जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, आ जाइए, हम लोग आपको सत्संग प्रदान करेंगे, कोई समाज के लोग कहेंगे ये मत करो वो मत करो, सुनने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों का बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा संघ है, इसमें भी आप सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसलिए हमारे मंदिरों में काउंसलर सिस्टम है और बाकी भक्ति वृक्ष है, जिससे कि कोई गृहस्थ में हो तो अपने ही विचारधारा के भक्तिमय विचारधारा के अन्य गृहस्थों के साथ अनुकूल प्रेममय संबंध स्थापित करके उनको भी एक आध्यात्मिक परिवेश प्राप्त हो, परिवार के सभी सदस्यों को भी ऐसी आध्यात्मिक स्फूर्ति का एक विशेष अवसर प्राप्त हो, इसलिए यह सब किया गया है। तो एक गृहस्थ भक्त प्रभुपाद के पास आए और वो कहने लगे कि आप कहते हो कि गृहस्थ में हमको कृष्ण को केंद्र बनाना चाहिए, लेकिन मैं और मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं प्रभुपाद। और पत्नी कहने लगी हाँ झगड़ा क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाता है ये हम पे। और वो कहने लगे ये भी हमारे ऊपर बहुत चिल्लाती है, तो आप बताइए क्या करें। तो प्रभुपाद ने कहा देखो झगड़े तो चलते रहेंगे, जहां दो लोग हैं वहां झगड़ा होगा, झगड़ा करो लेकिन चिल्लाओ मत, ये मेरा फॉर्मूला है। तो चले गए। कुछ महीनों के बाद फिर प्रभुपाद उनको मिले, प्रभुपाद ने पूछा गृहस्थी कैसी चल रही है, बोले बहुत बढ़िया चल रही है। प्रभुपाद ने कहा झगड़ा बंद हो गया क्या, नहीं झगड़ा अभी भी चलता है, लेकिन क्या है आपने कहा कि झगड़ा करो लेकिन चिल्लाओ मत, तो बिना चिल्लाने के झगड़ा में कोई मजा ही नहीं आता, इसलिए हमने झगड़ना भी बंद कर दिया। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कई लोग भक्त लोग आके कहते प्रभुपाद ये भक्त ने मेरे साथ ऐसे किया, ये भक्त ने मेरे साथ ऐसे किया, ये भक्त ने ऐसा किया। प्रभुपाद ने कहा अभी इस्कॉन में भक्त कौन है, एक ही भक्त है मैं, बाकी आप लोग सब अभी केवल वेश पहन के कृष्ण का नाम ले रहे हो। तो इसलिए हमको ये नहीं विचार करना चाहिए कि मतभेद हो गया तो सब समस्या हो गई। प्रभुपाद के पास एक भक्त आके बोले आई हैव गॉट लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद दिस डिवोटी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद सेड वेरी गुड, दैट मींस मायावाद फिलॉसफी इज रॉन्ग विच सेज एवरीथिंग इज वन। किसी के साथ मतभेद हो गया मतलब बहुत अच्छा है कि मायावाद खराब है, मायावाद गलत है, क्योंकि मतभेद नहीं होगा अर्थात दो लोगों का व्यक्तित्व नहीं होगा। प्रभुपाद कहते थे कि ये अपने शंकराचार्य का फिलॉसफी है, हम सब एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, लेकिन द्वारका मठ का पूरी मठ के साथ नहीं चलता, पूरी मठ का बद्री मठ के साथ नहीं चलता, और उनका श्रृंगेरी मठ के साथ नहीं चलता, तब उनका मतभेद जब आ जाता है। तो जहां चाहे मायावादी हो या ये हो या कुछ भी हो, जहां लोग होंगे वहां मतभेद होगा ही, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये बात बता रहे हैं कि हमको चाहिए कि गृहस्थ में रहकर भी कृष्ण को केंद्र बनाएं। एक अभी कविचंद्र महाराज हाल ही में सन्ने बता रहे थे एक कथा, एक बहुत सुंदर घर था और उसके बगल में एक विशाल वृक्ष था और वो पेड़ यूं झुका हुआ था और उस घर के छत को बिल्कुल स्पर्श कर रहा था, बड़ा आकर्षक लग रहा था, कलात्मक ढंग से बिल्कुल मुड़ा हुआ था, झुका हुआ था। तो उसको देखकर भक्त लोग प्रभुपाद को बोले, कितना सुंदर लग रहा है, वेरी आर्टिस्टिक, वो पेड़ क्या लग रहा है, हाँ क्या एंगल पे ऐसा झुका है। प्रभुपाद ने कहा, वो वास्तव में पिछले जीवन में ये मकान का मालिक था, इतना आसक्त था कि अभी भी छूट नहीं रहा आसक्ति, अभी भी देखो भूल नहीं रहा है, वो स्पर्श कर रहा है उसको। तो प्रभुपाद का देखने का पूरा दृष्टिकोण ही अलग था। तो इसलिए हमको चाहिए कि आसक्ति संपत्ति के प्रति नहीं, भगवत भक्ति के प्रति जोड़ें। और जब भगवत भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, एक अनायास प्राकृतिक स्वाभाविक विरक्ति हृदय के भीतर जागृत होगी। तो इसलिए यहां वर्णन आ रहा है कि तीसरा जो मुख्य मुद्दा है कि कौन व्यक्ति है जो हमको प्रशिक्षण दे, हु विल गिव द ट्रेनिंग, हु शुड गिव द ट्रेनिंग। तो यहां पर हमारे कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, ननु अर्थ, कह रहे हैं कृष्ण, ट्रेनिंग कौन देगा, कौन हमको प्रशिक्षण देगा। तो इसके लिए यहां वर्णन कर रहे हैं कि सवै सत्कर्मणां साक्षाद् द्विजातेर इह संभव आद्योंगी यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञान दो गुरु। जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ले और आध्यात्मिक ज्ञान दे, तो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठतम है। तो तीन प्रकार के गुरु बताते हैं, सवै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेर इह संभव। सबसे पहले जो पिता जन्म दे वो हमारे प्रथम गुरु हैं। द्विजातेर इह संभव, इह संभव अर्थात जो जन्म का कारण बने पिता, वो प्रथम गुरु। दूसरे गुरु सत्कर्मणां साक्षात, ही हू इनिशिएट्स हिम एज ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण एंड एंगेज इन रिलीजियस ड्यूटीज, जो हमारे धार्मिक क्रियाओं में हमको किसी प्रकार का प्रशिक्षण दें, यज्ञ इत्यादि संपन्न करने में सहायता करें, जो न्यूनतम आध्यात्मिक ज्ञान इत्यादि प्रदान करे, वो दूसरे गुरु हैं। और तीसरे आद्योंगी यथाश्रमणाम यथाहम ज्ञान दो, जो व्यक्ति दिव्य भक्ति का और कृष्ण का ज्ञान दे, वो वास्तव में तीसरे गुरु हैं और श्रेष्ठतम गुरु हैं। और वो कृष्ण कह रहे हैं, यथा अहम ज्ञान दो, ऐसे व्यक्ति को मुझसे अभिन्न मानना चाहिए। तो गुरु का अर्थ दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों होता है। कोई भी व्यक्ति जो आपको आध्यात्मिक दिव्य कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो आपको कृष्ण के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण के भक्ति के पथ पर आपको संलग्न करा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान दो, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, एंड ही प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। सो एनीवन हु ट्रेन्स अस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन अवर लाइव्स। कोई भी व्यक्ति जो हमको आध्यात्मिक प्रशिक्षण दे रहे हैं कृष्ण भक्ति का, वो हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। निरंजन महाराज अभी हमारे मंदिर में कथा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब प्रभुपाद वहां पर थे और उन्होंने एक बार एक लेक्चर में क्वीन कुंती का लेक्चर वो सुन रहे थे निरंजन महाराज, और प्रभुपाद ने कह दिया उसमें कि भक्ति के आरंभ में कभी कभी कुछ अड़चने आएंगी, प्रॉब्लम्स विल कम, बट वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय देम, बट इससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अड़चना ये बाधाएं माया देवी भेजती हैं, और माया देवी कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण की बड़े निकट की भक्त हैं, और उनका एक ही कार्य है कि कि ये देखना कि कोई व्यक्ति कृष्ण के पास जा रहा है उसकी सेवा करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं, सो माया देवी इज कृष्णास डिवोटी एंड शी इज ट्राइंग टू सी इफ डिवोटी इज गोइंग टू सर्व कृष्णा और डिस्टर्ब कृष्णा। आर यू गोइंग टू सर्व कृष्णा और डिस्टर्ब कृष्णा, यह देखने के लिए माया देवी अड़चने लाते हैं। तो वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब, हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। और निरंजन महाराज उस समय नए नए भक्त थे और उनको लग रहा था क्या प्रॉब्लम है भाई, हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रसाद बढ़िया मिल रहा है, मंदिर के भक्त भी अच्छा आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन द बिगिनिंग देयर विल बी डिस्टर्बेंसेस। तो आरंभ में कुछ समस्या नहीं होती। तो कुछ दिनों के बाद मंदिर में आ गए, रहने लगे और टेम्पल कमांडर सुबह सुबह सबको उठाने जाते थे, जगाने जाते थे। तो ये इस्कॉन के मंदिरों की नित्य लीला है कि सुबह में जागना जगाना है कि नहीं। तो और हम लोग सबके अपने बॉम्बे पुणे और अभी मायापुर में भी अटेंडेंस का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, वो आवश्यक है। अगर सुबह अटेंडेंस नहीं हो तो कोई उठेगा ही नहीं, सोते ही रहेंगे, क्योंकि दूसरों को देखकर हम लोग प्रभावित होते हैं। कमरे में जब सब लोग सो रहे हों और एक व्यक्ति उठे और बगल में देखे सब सो रहे हैं, दाएं मुड़े सो रहे हैं, बाएं मुड़े सो रहे हैं, उसको देखकर उसको भी लगता है कि मुझे वैष्णव का ही आचरण करना चाहिए और मैं भी सो जाऊं। चाहे वो कितना जल्दी भी अलार्म लगाए, वो उठेगा, एक दिन उठेगा, दो दिन उठेगा, तीसरे दिन देखेगा सब सो रहे हैं और दिख रहा है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि दिख रही है, सब लोग ऐसा घोड़े बेच के सो रहे हैं, तो वो भी बोला यही अच्छा है कि नहीं। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वैष्णव लोगों को, मैं उठ जाऊंगा आवाज होगी वो लोग डिस्टर्ब हो, वैष्णव सेवा के लिए सो जाता हूं। तो मन अलग अलग प्रकार से प्रस्ताव रखेगा, इसलिए हम लोग का सिस्टम है उठो और देर हो जाए तो 108 महामंत्र वगैरह लिखना पड़ता है, और उसको पनिशमेंट भी नहीं बोल सकते क्योंकि 108 मंत्र लिख रहे तो पनिशमेंट कहते, रिवॉर्ड कहते, रिवॉर्ड 108 महामंत्र लिखने का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और एक बार हमारे कृष्णानंद प्रभु बैठ के मंत्र लिख रहे थे अपने आप, कुछ तो उनको टाइम था तो वो हरे कृष्ण लिखे जा रहे थे। तो एक हमारे भक्त, नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग जानते हो उसको, वो जाके कृष्णानंद प्रभु को बोले आप ये जो शीट्स जितना भर दोगे ना आपका काम नहीं आएगा तो मेरे को दे देना, मेरे काम आएगा। वो बाद में वो प्रयोग करना चाहते थे कि कभी लेट हो गए उस दिन प्रोड्यूस कर देंगे, हो गया मेरा मंत्र रेडी है। तो निरंजन महाराज को कमांडर जगाने लगे, और कमांडर अमेरिका में भी थोड़ा अमेरिकी स्टाइल में जगाते हैं, यहां पे तो हम लोग उठा देंगे उठ जा करके, लेकिन वहां उठाने का स्टाइल अलग था। टेंपल कमांडर आते थे 6.5 फुट के और सीधा आकर स्लीपिंग बैग में सोते थे, तो स्लीपिंग बैग का कोना पकड़ते थे पैर के वहां और सीधा उठा देते थे गोनी की तरह सीधा, और आदमी बिल्कुल शीर्षासन में गिरता था। तो उनका दिन शुरू होता था योगा से, पहला आसन शीर्षासन। तो ये देखकर वो धार धार करके नीचे गिरते थे भक्तगण, और उनको एक दिन ऐसा कर दिया तो इनको बड़ा क्रोध है, बोले क्या है ये, कोई तरीका है क्या, ये वैष्णव है क्या, ये क्या है, ये जा रहा है मैं छोड़ के, बहुत हो गया, इसको हम मंदिर में पटकने के लिए नहीं आया हूं मैं, रोज रोज गिरने के लिए नहीं आया, मूर्छ से नहीं होता ये। और ऐसा सोच ही रहे थे कि कौन कौन सा सामान कहां पर है, कहां पैकिंग करूं, किस तरह कौन से दरवाजे से निकलूं। और स्नान करते करते अचानक उनको प्रभुपाद का वो लेक्चर याद आ गया, इन द बिगिनिंग देयर विल बी मेनी डिस्टर्बेंसेस बट दोज डिस्टर्बेंसेस आर सेंट बाय माया हु इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, शी इज ट्राइंग जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट यू वेदर यू हैव कम टू सर्व कृष्णा और डिस्टर्ब कृष्णा। ये पूरा लाइन एज इट इज प्रभुपाद के ही ध्वनि में उनके मन के अंदर गूंजा, और वो बोला अरे बाप रे, ये तो कुछ महीने पहले मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपना विचार मन से अलग कर दिया और फिर रह गए, और बोले कभी कभी एक एक सेंटेंस भी कभी कभी हमको बचा सकता है, इसलिए लेक्चर में चाहे कितनी भी नींद आए ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए, सोते सोते बीच में जाकर एक आध लाइन भी सुन ले उससे भी होश उड़ सकता है। कभी कभी कुछ लोग प्रवचन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जब आंख बंद करते हैं ऑडियंस में, महाप्रसाद नहीं खोलते, बीच में उनका कभी नेत्र खुलता ही नहीं। तो कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन एक एक लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कब कौन सा अंदर चिपक जाए और हम लोग को बचा ले कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं किससे प्रशिक्षण लेना चाहिए। आध्यात्मिक प्रशिक्षण गुरु के आश्रय में, और गुरु का आश्रय अर्थात गुरु के अब प्रतिनिधि और जो मंदिर में भक्त लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, इफ स्पिरिचुअल मास्टर बिकम एंग्री विथ मी व्हाट शुड आई थिंक, व्हाट शुड आई डू। प्रभुपाद यू शुड लाफ। अरे ये क्या, गुस्सा करे तो मैं हंसू? तो प्रभुपाद को सोचना चाहिए, ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव। अरे ब्रह्मांड में कितने जीव भटक रहे हैं देखो, सब लावारिस हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, लेकिन ऐसे कोटि कोटि जीव में कोई एक सौभाग्यशाली जीव है जिस पर गुरु की कृपा हुई है और वो उसको प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे आप भगवत धाम जा सको। कितने परसेंट जीव भटक रहे हैं और कितने लोगों पर गुरु की दया हुई है। तो इसलिए कोई हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण दे, या कोई कभी डांट भी दे, कोई बुरा भला भी कह दे, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे क्या डांट दिया मैं जा रहा हूं। बोले कहां जाओगे, जा जा के तो अब आए हो, इतने देर भटकने के बाद तो आए हो, जाना कहां है, है कि नहीं। अगर 3 दिन का ट्रेन का यात्रा के बाद हम लोग आए हैं और बड़े कठिनाई के बाद हम लोग अपने घर पर आए हैं, और घर पर पानी के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, शवर काम नहीं करता, केवल बाल्टी है, तो ये नहीं कहेंगे अरे शवर काम नहीं करता वापस मैं जाऊंगा ट्रेन में। अरे अभी तो भ्रमण करके आए हो, घर पे पहुंचे हो, चाहे थोड़ी बहुत कुछ समस्या हो उसको तो सहन करना चाहिए। जर्नी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, रिजर्व टिकट है आपका और आप बैठे हो S2 बोगी में सीट नंबर 46 में, और आप देख रहे हो कि फैन काम नहीं करता, तो फैन काम नहीं करता तो ये मतलब नहीं आप अगले स्टेशन में नीचे उतर जाओ, प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ ऐसे लेके। बोले क्या बात है, काम नहीं कर रहा। बोले क्या फैन, तो ट्रेन जा रही है, जाने दो, फैन काम नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म पे फैन काम कर रहे हैं। अरे प्लेटफॉर्म पे फैन काम कर रहा है लेकिन स्टेशन पे आपको जाना है, यात्रा आपको करनी है या कंडक्टर को करना है, और जो अपना ड्राइवर है कंडक्टर है वो तो पहुंचेगा ही दिल्ली, लेकिन आपको जाना है कि नहीं। बोले नहीं फैन काम नहीं कर रहा। तो समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन सहन करना बहुत आवश्यक है। एक शिष्य प्रभुपाद के बगल में खड़े होकर चामर डुला रहे थे, और चामर डुलाते वो बिल्कुल चामर में इतना मग्न हो गए कि वो अपना ही चामर को देख रहे थे। ओह क्या घुमा रहा हूं, ओह क्या एंगल पे है, आहा हा, वो इतने बढ़िया ढंग से चामर को डुला रहे थे, उसमें मग्न हो गए और अपने आप मस्त मुस्कुरा रहे उसको देखकर। अरे अभी गिरने वाला, अरे वो अब बचा लिया मैंने उसको। और प्रभुपाद बगल में मुड़ के देखे, बोले ये अपनी लीला में लगा हुआ है, अपना नित्य लीला प्रविष्ट है ये। बोले ए, प्रभुपाद ने कहा तुम चामर दुनिया भर में घुमा रहे हो, मेरे यहां सर पे मक्खी बैठी है उसको नहीं हिला पा रहे। अरे दुनिया भर में घूम रहे हो, जरा यहां भी घुमाओ। तो बोला अरे सॉरी सॉरी करके। तो प्रभुपाद स्वयं देखते थे कि किसका सेवा से ध्यान भटक गया, किसको ध्यान में लगाना है, ये सब एक एक प्रशिक्षण प्रभुपाद स्वयं देते थे। और उस समय जो भक्त लोग कहते हैं, डोंट थिंक इट वॉज ईजी स्टेइंग विद प्रभुपाद। आज हम लोग सुनते हैं कि प्रभुपाद ने इसको डांट दिया और हम लोग हा 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 हंसते हैं, लेकिन जिसने डांट खाया उसको उस समय पूछो तब कैसे लगा, तो वो नहीं बोलेगा हा 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 हा, वो रोया। और 10 साल के बाद वो कथा सुनाता है तो हंसता है वो। तो इसलिए जैसे एक प्रभुपाद ने एक भक्त को अपना लगा रहा था स्टैंप, हाँ स्टैंप लगा रहा था, कोई प्रभुपाद के बहुत सारे लेटर्स थे और सारे लेटर्स के ऊपर स्टैंप लगा रहा था, अपना रेगुलर स्टाइल में लगा रहा था। तो प्रभुपाद अंदर आए, बोले क्या कर रहा है ये। बोले स्टैंप लगा रहा हूं।
प्रभुपाद बोले अंदर मेरा चिट्ठी और कई में मैंने अपना ट्रांसलेशन वगैरह लिखा है, भागवत लिखा है, उसमें तू ऐसा लगा रहा है, झूठा लगा रहा है, अपना महाप्रसाद दे रहा है उसको। तो प्रभुपाद ने ये तरीका नहीं है, पानी लो पानी लगाओ, ये तरीका है, दिस इज मलेच्छा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो बोला पानी रख लिया और पानी रख के पानी लगा लगा के स्टैंप लगाने लगा, लास्ट में एक एनवेलप बच गया, एक लास्ट स्टैंप लगाना था, पानी खत्म हो गया और वो पानी का जो टैप था बगल के कमरे में था, अब उठ के जाना था, इतना थप्पी रेडी था, पानी से बिल्कुल बोनाफाइड लगाया था, एक लास्ट रह गया। तो बायां देखा, दायां देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, देखने वाला कोई नहीं, स्टैंप लिया और लगाया, दरवाजा खुला, प्रभुपाद खड़े थे। तो बोले बताया था तुमको, बोले नहीं इतना जरा मैंने पानी से लगाया, आई टोल्ड यू नॉट टू यूज दिस। तो जब फंसना होता है तो भगवान भी योजना बना के फंसाते हैं, और हमको लगता है क्या मैं 16 मला करके इतना इंप्रेस किया अथॉरिटी को, लेकिन जब फंसना था गलत टाइम पे फंसा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है समझना कि किस तरह से कौन प्रशिक्षण देगा। खैर एक और पॉइंट था, क्यों प्रशिक्षण देना चाहिए, और ये पॉइंट लास्ट में हम लेंगे अभी। ननुवर्तको विदा वर्ण वराश्रम विदाम इह, why one should accept training for two things, for liberation and for pleasing Krishna, why the training is there. So iske upar jyada hum charcha nahi karenge, and we'll just go to the last point, how that training must be done, how one should perform this service and accept that training. To ye bahut mahatvapurna hai aur yahan varnan aa raha hai, naham ijja prajatibhyam तपसा उपशमे नवा तुष्येयं सर्वभूतानां गुरु शुश्रूषया यथा नाहम इज्य प्रजातिभ्याम। हाउ दैट ट्रेनिंग शुड बी डन, कैसे तपसा उपशमे न, वो कह रहे हैं दो बातें। द डिवोटी द डिसाइपल द साधका शुड सर्व द गुरु और एनीवन हु इज ट्रेनिंग हिम फेथफुली एंड लविंगली। तपसा उपशमे न वा तुष्येयं सर्वभूतानां गुरु शुश्रूषया, इस तरह से। सो सबसे पहले फेथफुल सर्विस, और दूसरा है लविंग सर्विस, अर्थात श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक सेवा होनी चाहिए। और रूप गोस्वामी जी प्रेम की परिभाषा देते हैं, when there is every reason for a relationship to be broken and still the relationship is not broken, that is called love. प्रेम की परिभाषा है कि कोई संबंध को छोड़ने के लिए हर कारण हो फिर भी वो संबंध छूटता नहीं। इसलिए जब कृष्ण ने अर्धरात्रि में जब वंशीवट में अपना वेणुवादन किया तो गोपियां सब कुछ छोड़कर आ गईं, प्रश्न नहीं किया कि क्यों बजा रहे हैं। हम लोग रात को सोते रहेंगे और कृष्ण बांसुरी भी बजाएंगे, अपना पहला प्रश्न होगा रात को क्यों बजा रहे। अरे सुबह मैं उठ जाता हूं 4:30 बजे, उसके बाद कभी भी बजाओ मैं तैयार हूं, बराबर अभी अभी सोया हूं, नींद अच्छी लगी है और अभी आपने बजा दिया। तो गोपियों का जो हम लोग वर्णन करते हैं वो सुनना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि गोपियों ने केवल यही पूछा कैसे मैं सेवा करूं, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों सेवा करूं। हम लोगों का आधा शक्ति चला जाता है वाई, वाई आई शुड सर्व, नॉट हाउ आई शुड सर्व। सो फेथफुली एंड लविंगली, श्रद्धापूर्वक। खैर ये तो बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन एक बहुत सुंदर उदाहरण कृष्ण अपना ही देते हैं और उसमें यह श्लोक आता है जो आज का श्लोक है। वयं वृषम तत्र महानीलांबुभिर् निहन्यमाना मुहुरंब संप्लवे दिशो न जानन्तत परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रमातुराः। तो इसका उदाहरण देते समय कृष्ण कहते हैं कि हे सुदामा, तो आपको याद है कि एक दिन संदीपनी मुनि की पत्नी ने गुरु पत्नी ने हमको भेजा वन में मिशन पर कि जाओ और गुरु के लिए आप लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ। तो गुरु के मिशन पर हम लोग वन में भटक गए, वन में प्रवेश किए और उस समय अचानक अकाल वर्षा होने लगी। उसकी कोई पूर्व योजना नहीं थी, सूचना नहीं थी, अचानक वर्षा होने लगी, बवंडर उठने लगा और चारों दिशाओं में महाभयंकर आंधी तूफान उठ गया और सूर्यास्त होने लगा और धीरे धीरे वन के भीतर जल आप्लावित होने लगा और हम लोग उस जल के भीतर डूबने लगे। तो जब हम लोग मिशन पर जाते हैं तो यह नहीं विचार करना चाहिए कि सब कुछ ठीक चलेगा। तो कृष्ण, ये तो खैर बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा कि कृष्ण और सुदामा को संदीपनी मुनि के मिशन पर वन के भीतर जाना पड़ा। और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई समस्या नहीं आएगी, समस्याएं आएंगी। और कृष्ण और सुदामा जी साक्षात अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कई ऐसी परिस्थितियां उठ खड़ी होंगी जिसका हमने योजना नहीं बनाया। तो ऐसा ही हो गया, अचानक वर्षा होने लगी, जल उठने लगा। वयम वृषम तत्र महा अनिला अंबुभीर, और इतना जबरदस्त पानी उठने लगा, हम लोग उसमें डूबने लगे। निहन्य माना मुहुर अंबु संप्लवे, अंबु संप्लवे अर्थात फ्लडिंग। तो जब इस तरफ पानी उठने लगा चारों दिशाओं में, दिशो अविदंत अथ परस्परम वने, तो कृष्ण और सुदामा गुरु की सेवा में लगे थे और ये नहीं विचार किया जब तक अनुकूल मौसम होगा तब तक हम लोग जाएंगे, जब प्रतिकूल मौसम होगा भाग चलो, छोड़ो इसको। तो कई बार हमको लगता है सेवा तब तक करेंगे जब सब कुछ ठीक चलेगा, कुछ गड़बड़ हो गया छोड़ दो, कुछ समस्या आ गई, विकट परिस्थिति आ गई छोड़ दो, नहीं। तो किस तरह सेवा करनी चाहिए, हाउ टू परफॉर्म दिस सर्विस, हाउ टू टेक दिस ट्रेनिंग फेथफुली, एंड दैट फेथफुलनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज लव। अर्थात चाहे कोई भी परिस्थिति आए, संग विच्छेद न होने दें। दिशो अविदंत, चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया था, वो देख नहीं पा रहे थे कि कौन सी दिशा में पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। दिशो अविदंत, भविष्य हमारा क्या है इसकी जानकारी नहीं थी। देयर वॉज टोटल इनसिक्योरिटी। कई बार लोगों को लगता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मैं इस्कॉन में आ गया हूं, हरे कृष्ण में आ गया हूं, भविष्य में किस तरह समस्याएं आएंगी कह पाना कठिन है। वर्तमान की परिस्थिति को देखकर भविष्य का डर लगता है, भय लगता है। वर्तमान में इतना आंधी तूफान मचा हुआ है, अंधकार फैला हुआ है, जोर जोर से बादलों की गड़गड़ाहट इतनी होती है, इसको सब देखकर घबराहट होती है कि आगे क्या होगा। दिशो अविदंत, तो कृष्ण और सुदामा देख नहीं पाए कि कौन सी दिशा में जाने से अनुकूल परिस्थिति होगी, कब वो लोग सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं, सुरक्षा का कोई उनको आभास नहीं था। अथ परस्परम वने, तो ऐसी अवस्था में हमारे आध्यात्मिक चरित्र की परीक्षा होती है। आवर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी इज टेस्टेड एट द टाइम ऑफ कैलामिटी। तो जब ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आती है, सामान्य व्यक्ति स्थान को छोड़कर सीधा भागेगा अपने आप को बचाओ। लेकिन कृष्ण और सुदामा ने क्या किया, ये बहुत ही गोपनीय बात है और इस चरित्र को देखकर बहुत प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं हम लोग। अब चारों दिशाओं में वर्षा हो रही है, पानी उठ रहा है, कुछ पता नहीं कि वो लोग जीवित सुरक्षित होंगे कि नहीं। तब उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में लकड़ियां जो काट के लेके आए थे मिशन के लिए गुरु की सेवा में, वो एक एक हाथ में था। तो जब जान पे आती है तो व्यक्ति सबसे पहले विचार करेगा, लकड़ी छोड़ो, जान बचाओ, भागो। और ये नहीं कृष्ण एक दिशा में भागे, सुदामा एक दिशा में भागे, नहीं। अथ परस्परम वने, तो परस्परम अर्थात एक दूसरे का संग उनको था। अब उस
विकट परिस्थिति में दूसरा कोई उनका सहारा नहीं था। कृष्ण के लिए सुदामा, सुदामा के लिए कृष्ण, और कोई नहीं।
गृहीत हस्ता परिबभ्रमातुराहा,
ये अंतिम लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गृहीत हस्ता, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पानी ग्रहण किया। कृष्ण ने सुदामा का पानी ग्रहण किया, सुदामा ने कृष्ण का, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, सहानुभूति प्रदान कर रहे थे। तो कोई कह सकता है कि लकड़ियों का क्या हुआ? परिबभ्रिम आतुरा, तो परिबभ्रिम यहां पर परपोट में हमने पढ़ा, ब्री मीन्स टू कैरी, इंडिकेट्स दैट एज द टू यंग बॉयज वॉन्डर्ड दे कंटिन्यू टू कैरी द फायरवुड दे हैड सिक्योर्ड फॉर देयर स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा नहीं कि महाभयंकर वर्षापात से घबराकर वो लोग मिशन को भूल गए। मिशन भी था उनके हाथ में, जिसके लिए वो लोग वन में आए थे, उस लकड़ियों को ग्रहण करके रखे थे। केवल कुछ बूंदे वर्षा के कारण, केवल अपने दैहिक अंत को आता हुआ देखकर घबराकर वो लोग अपने मिशन को त्याग नहीं दिए। उन्होंने अपने हाथ में उस लकड़ियों को भी ग्रहण किया था। और ऐसा भी नहीं कि लकड़ियों को ग्रहण करने में इतने वो मस्त थे कि एक दूसरे को भी भूल गए। तो ये दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं, और वो ये क्या कि अगर मिशन को हमको आगे बढ़ाना है तो दो बातें आवश्यक हैं। हमको लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, वी हैव टू कीप द मिशन इन माइंड। बट इफ यू सिंपली कीप द मिशन इन माइंड एंड फॉरगेट द मिशनरीज, देन दैट इज सेंटिमेंटलिज्म, वो केवल भावुकता है, वो केवल इंपर्सनलिज्म है, निर्विशेषवाद है कि केवल मिशन, केवल मिशन, केवल मिशन। दूसरे परेशान हैं, उनके विषय में कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और केवल मिशनरी का ही चिंता करना, सुदामा तुम कैसे हो, कृष्ण आप कैसे हो, लकड़ी कैसे, अरे भाड़ में गया लकड़ी, तुम कैसे हो, आप तो ठीक हो ना, हाँ मैं भी ठीक हूं, चलो हम दोनों दोनों चलकर उस दिशा से भागें, क्योंकि संदीपनी मुनि का आश्रम उस दिशा में है, भविष्य में कभी उस आश्रम में ना जा पाए, हम दोनों साथ मिलकर भाग चले। तो दो लोग साथ में आए और सहानुभूति व्यक्त करें एक दूसरे के प्रति, बड़ा प्रेम व्यक्त करें, लेकिन मिशन को ही भूल जाएं, उसको कहते हैं भावुकता। सो सिंपली टू टेक केयर ऑफ ईच अदर फॉरगेटिंग द मिशन इज सेंटिमेंटलिज्म, एंड ओनली टू टेक केयर ऑफ मिशन एंड फॉरगेट द अदर डिवोटीज इज इंपर्सनलिज्म। तो सुदामा और कृष्ण एक दूसरे का हाथ भी ग्रहण किए थे और दूसरे हाथ में उनका लकड़ी भी था, अर्थात वो एक दूसरे का विचार भी कर रहे थे और संदीपनी मुनि उनके मिशन का भी उनका विचार था। तो ये हमको अपने जीवन में उतारना है, दैट एज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज वी शुड नाइदर बी सेंटिमेंटल नॉर इंपर्सनल। भक्तों का ख्याल करना है और मिशन का भी ख्याल करना है, और ये दोनों जब हम साथ में लेकर चलेंगे तब जाकर हम श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, यू कैन शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय हाउ यू कोऑपरेट। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बढ़िया भक्तों का समूह है, राधेश्याम प्रभु के और बाकी सब भक्तों के नेतृत्व में बहुत अच्छी प्रकार से आप लोग भक्ति कर रहे हो। अभी कुछ ही समय में आपका मंदिर का कंस्ट्रक्शन आरंभ होगा, इसके लिए बड़ा संघर्ष आप सबको मिलकर करना है। बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, ये मिशन बड़ा कठिन है, आसान नहीं है, और इस मिशन में बहुत सारे मिशनरी लगे हुए हैं। तो आपको इस तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, आदान प्रदान करना है कि साथ साथ एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए इस मिशन में आप आगे बढ़िए, क्योंकि समस्याएं हर पग पे आएंगी, हर स्थान में आएंगी। और मैं कह सकता हूं कि विश्व के पूरे मंदिरों में, कई कई मंदिरों में भ्रमण करके देखने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि इस्कॉन पूना का जो मंदिर है, विश्व के मुख्य चार पांच मंदिरों में एक होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बहुत विचार करने के बाद इतने सारे भक्तगण जो कि ट्रेंड हैं और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, और अब आप लोगों के पास भक्तों का एक पूरी भक्तों की सेना है, और वो सभी मिलकर अब कृष्ण के संतोष के लिए एक मंदिर खड़ा कर रहे हैं, ये पूरे विश्व भर में एक अपने आप का एक अद्भुत उदाहरण है। अधिकांश स्थानों में जो मंदिर खड़े किए गए हैं उसमें कुछ मुख्य लोगों ने मिलकर ही फंड रेजिंग किया और मंदिर के निर्माण कार्य में लगे रहे, और कई बार इतने भक्त लोग भी नहीं थे, मंदिर बनने के बाद फिर भक्त बनने लगे। लेकिन आप लोगों के पास पहले इतने सारे भक्त हैं और कितने ही लोग इस मंदिर के लिए और फंड रेजिंग के लिए और बाकी सभी कार्यों में भगवान को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं, ये अपने आप में पूरे विश्व में एक विशेष ज्वलंत उत्साह में उदाहरण है, और हम आप सबको इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये सुंदर श्लोक के माध्यम से बस इस बात को हम वर्णन करना चाह रहे थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को इस्कॉन संस्था में संपूर्ण आध्यात्मिक प्रशिक्षण का अवसर दिया है। जैसे मैं भगत जी का एक बहुत सुंदर कथा है, प्रभुपाद वृंदावन में थे और कुकिंग कर रहे थे, तो भगत जी ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ने भगत जी को कहा, ये क्या तुम कुकिंग वुकिंग कर रहे हो, मैं तो 500 लोगों का प्रसाद एक घंटे में बना दूंगा। तो भगत जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद ने कहा, अरे बेट लगाओ, चलो हो जाए 1,00,000 रुपए का बेट। तो भगत जी ने बोला, नहीं नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं, बेट लगाते 1,00,000 का, देखते हैं हम कर लेंगे। और भगत जी ने कहा, देखो प्रभुपाद, अगर आप बेट हार गए, अब बेट जीत गए तो पैसे रख लोगे, और बेट हार गए और मैं पैसे जीत गया तो आप मेरे को कहोगे पैसा डोनेशन में दे दो, तो कुछ भी करो पैसा आपके पास आने वाला है, तो इसलिए बेट लगाए कुछ फायदा नहीं। तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण करने के पश्चात वृंदावन में आए, और वृंदावन में उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, मायापुर में चंद्रोदय मंदिर की स्थापना की, जिससे लोग आकर कृष्ण का आश्रय ले सकें। और उसके लिए जो धनराशि थी प्रभुपाद हर जगह से एकत्र करके लाए, स्वयं प्रभुपाद के पैसे से ये सारे मंदिर खड़े किए गए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का बड़ा इसके पीछे विचार था, और आप लोग भी इस सुंदर कार्य में लगे हुए हो, और मैं राधेश्याम प्रभु का विशेष रूप से आभारी हूँ और सब भक्तों का कि आप लोग इस कार्य में पूरे उत्साह के साथ जोश के साथ लगे हुए हो। जो बाधाएं आएंगी उसको सहन करना है। कोई भी विश्व के किसी भी इस्कॉन मंदिर में कोई परफेक्ट सिस्टम कहीं पर नहीं है, कोई परफेक्ट प्रीचर, परफेक्ट मैनेजर, परफेक्ट डिवोटी कहीं नहीं मिलेगा। आपको हो सकता लगे कि कहीं यहां हो जाए वहां हो जाए, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सब जगह समस्याएं हैं, सब जगह सहन करना है। गृहीत हस्ता परिबभ्री मातुरा, एक दूसरे का सहारा मत छोड़ो और अपनी सेवा को भी मत छोड़ो, सेवा को भी मत छोड़ो और सेवक को भी मत छोड़ो। सेवा और सेवक दोनों को लेकर साथ में चलना है, दोनों में से एक को छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आज के श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का यही सार तत्व है, और इस बात को हम लोग समझ गए तो हमारा जीवन पूर्ण कृष्ण भक्ति में होने में चिरकाल नहीं लगेगा। ये श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा हम सब पर है। इन शब्दों के साथ कथा को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, थोड़ा समय दिया था उससे विलंब हो गया, क्षमा चाहता हूं।